साहिबगंज चार छह दोष नाश के लिए विशेष सत्संग प्रश्न काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मद ये बहुत दुख देते हैं क्या करें उत्तर ये छह दोष हैं और इसके लिए हम आपको दो शस्त्र देते हैं शत्रु तो छह हैं परंतु शस्त्र आपको हम दो ही बताते हैं पहला है भजन दूसरा है सत्संग भगवान से पुकार लगावे भगवान की भक्ति कह दो भगवान से पुकार कह दो भगवान का भजन कह दो एक ही बात है भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ कहां जाए हमारे तो जब जब आपत्ति आती है पुकार लेते हैं तो ये सब भाग जाते हैं ये हमारी देखी हुई बात है डाकू लोग पुलिस के नाम से भाग जाते हैं इसी प्रकार ये दोष भगवान का नाम लेते ही भाग जाते हैं इससे सबसे अच्छा उपाय भगवान की पुकार लगाओ अंदर में व्यथा होनी चाहिए जिस प्रकार द्रौपदी ने पुकार लगाई भीतर की जलन से पुकार लगाई गजेंद्र एकदम असहाय होकर पुकारने लगा इस प्रकार आतुर हो जाओ काम क्रोध लोभ दोष आवे इससे इतना खतरा नहीं है लेकिन आप लोग इनके आक्रमण को सह लेते हो आप इनको भगाने के लिए आतुर नहीं होते हो ये बड़ा दोष है कुर्सी और है छोटी छोटी बात में आप दुखी होते हो और छह महान शत्रुओं से घिर करके भी आप हंसते हो सोते हो खाते हो कोई चिंता ही नहीं आतुर होकर पुकार लगाओ काम क्रोध लोभ पड़े रहेंगे यदि आपकी आतुरता तीव्र हो जाएगी तो भगवान स्वयं आ जाए काम क्रोध वहां पड़े तो पड़े हो भगवान उनकी परवाह नहीं करते आपकी आतुरता को सह नहीं सकते सारे संकटों का उपाय है विनाश का उपाय ऐसा जबरदस्त उपाय है ये अस्त्र अपने पास रखो जब काम पड़े पुकारो अंदर से हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये हमारे लिए गायत्री मंत्र है मैं इसको गायत्री मंत्र से कम नहीं मानता हूं सगुण साकार की उपासना का ये हमारे यहां मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा। नारायण अस्त्र की जो है ये अस्त्र, नारायण अस्त्र तो दोबारा नहीं चलाया जा सकता, केवल एक बार एक चलाया जा सकता है। पर ये ऐसा नारायण अस्त्र आपको बताया है, बार बार चलाओ। नारायण का नाम ही तो नारायण अस्त्र है। भगवान से आर्त होकर पुकारो, इतना काम तो करो बाबा, तुरंत काम हो जाएगा। पुकार लगाओ। आप यदि आतुर होकर के पुकारोगे तो फिर ढूंढने पर भी काम क्रोध नहीं मिलेंगे। इस अस्त्र से एक दो नहीं, हजारों के शत्रु मिट सकते हैं। प्रश्न, बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्या विश्वास होने से काम हो जाएगा? उत्तर, अरे थे विश्वास के चक्कर में काई पड़ा हूं, अब आर तो मैं थाने दोष मिटाने की बात कह रही हूं। विश्वास हो चाहे न हो, बिना के नाम की अपार महिमा है। हमारे विश्वास नहीं होने पर भी नाम की महिमा घटे नहीं है। हमारे कने जितनो विश्वास है उतनो काम में ले। कोई गाड़ी में तेल कम है तो जितो कम है बितो तेल थे काम में ले, आगे तेल री जगह आवे तो तेल भरा लो। पर है जितो तो ले होगी, अब तेल नहीं है, तेल नहीं है, कहीं चालान। आ तो न चाल मेरी बात दिखती है। नाम की अपार महिमा, थाकने थोड़ो सो भी विश्वास नहीं हो तो नाम लेवेगा ही क्यों? और मान लो विश्वास नहीं है तब भी नाम लेते रहो। एक आदमी के पित्त की बीमारी है, वैद्य बताता है मिश्री चूसा करो। रोगी कहवे कि मुंह तो खारो रहवे, मिश्री असर नहीं करे। वैद्य कहवे को पित्त आप ही शांत हो जावे को, तू चूसा रख। इसी तरह ऐ बीमारियां हैं, नाम जपते रहो, पुकारते रहो, वो भयंकर रोग दूर हो जावेगो। थोड़ी श्रद्धा है तब भी काम चलेगो, ज्यादा हुए तो काम यही पड़े है। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दसो। प्रश्न, भजन के प्रभाव से पहले के अशुभ कर्म है वे किए हुए हैं वो कटते हैं कि नहीं कटते हैं? वो तो बिना भोगे तो नहीं कटते हैं, तो भजन तो अब करेंगे तो पिछले कर्मों का क्या होगा? उत्तर, हम लोगों ने जितने पाप किए हैं आपको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, भंडार के भंडार भरे पड़े हैं। जैसे किसान का कोठा अनाज से भरा रहता है, अब कितने दाने हैं किसान को ही पता नहीं, दानों को कौन गिनने बैठे। ऐसे हमारे पापों के कर्मों के कोठे भरे पड़े हैं। किसान के यहां बहुत अनाज है, थोड़ा बीज खेत में बो दिया तब उसका दो विभाग हो गया। इसी प्रकार हमारे कर्मों के दो विभाग है, दो विभाग ने एक तो बोयोड़ो है एक मायने कोठम है, दो विभाग हो गया। पहले एक कोठम ही आ, अब बोरी दो बोरी ले खेत में कर दिया तो दो ओ तुम्हारो अनाज कोठा मुसू लायोड़ो है बोयोड़ो है ओ मारे कन पहले रो पड़े हो, दो विभाग हो गए। ऐसे कर्म के दो विभाग हो गए, एक संचित है एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध किसका नाम है जो फल देने के लिए सन्मुख हो गया है। जो प्रारब्ध आता है उसका तो अधिकांश में भोग होने से ही नाश होता है। शास्त्रों में प्रायश्चित जो बताए गए हैं उससे भी पाप का नाश होता है। भगवान से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम बहुत तकलीफ पा रहे हैं, इस तकलीफ को दूर करो। भगवान समझते हैं कि इसे निवारण करने से इसका हित है तो वह निवारण कर देते हैं, और यदि उस तकलीफ को दूर करने में हम लोगों का हित नहीं देखते हैं तो वो दूर नहीं करते हैं। पापों का फल भुगताना ठीक समझते हैं तब तो भुगताते हैं, वे जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही नहीं परम हित है। बच्चे के बहुत जोर का फोड़ा हो गया, मां बाप देखते हैं कि चीरा लगवाना पड़ेगा उसी से ही ठीक होगा, तो वे लड़के को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते माता पिता कि बच्चा रोएगा, रोएगा तो रोएगा लेकिन ये फोड़ा पड़ा रहेगा तो कितना नुकसान होगा। इसी प्रकार भगवान हमारे रोने की परवाह नहीं करते, पाप का फल देते हैं। प्रश्न, दशरथ जी को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी जो भगवान के पिछले जन्म के भी भक्त थे इस जन्म के भी भगत थे, बड़ा प्रेम करते थे, कितना कष्ट उठाया। अर्जुन को भी कितना कष्ट हुआ, और हमारे मन में ये बड़ा भयंकर भय बैठा हुआ है कि ऐसे भगवान हमको भी कष्ट देंगे तो क्या होगा। हमारे ये भी बात जची हुई है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्मों का फल थोड़ा ही नष्ट होता है, होता तो दशरथ जी क्यों मुसीबत में पड़ते, अर्जुन को क्यों कष्ट होता, क्या करें हमारे समझ में नहीं आता। उत्तर, आपने अभी सत्संग कम किया है इसलिए आपको बताते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, नष्ट नहीं भी होता है और नष्ट होता भी है, दोनों ही बातें हैं। राजा दशरथ के लिए तो श्रवण का शाप था परंतु वो वरदान हो गया। कितने ही दशरथ जी रोए बिलखे सब कुछ किया पर अंत में क्या बोले, राम राम कही राम कही राम राम कह राम। जिस समय श्रवण के पिता ने साप दिया था, साप सुनकर के तो दशरथ जी ने एक मजाक ही समझी, ये मेरे तो पुत्र है ही नहीं, इसलिए इस श्राप से तो मेरा पुत्र होगा ही होगा, तो पुत्र होगा तो ये मेरे लाभ की बात है। और पुत्र के लिए नाम लेते हुए मरे तो लाभ ही हुआ। दशरथ जी में भगवान की भक्ति थी तो श्रवण का शाप भी मिल गया और भक्ति भी हो गई, अनुकूलता बना ली उन्होंने। भगवान उसी में उनका हित समझते थे, नहीं तो उलट पुलट कर देते। कितना लाभ उठाया दशरथ जी ने, किसी ऋषि का शाप मिलना और पुत्र के वियोग में तू तड़प तड़प के मरेगा, कितनी कठोरता की बात थी, लेकिन दशरथ जी के लिए बड़ी अनुकूलता हो गई। दोनों ही अनुकूलता हुई, बेटा भी मिला और भगवान का नाम लेते हुए मरे। ये भक्तों की आदत होती है। भगवान ने उनके कर्म को बदला नहीं, पर दशरथ जी ने उसको साधन बना लिया। ऐसे हरेक आदमी को अपने पिछले कर्मों का जो भी उसको फल मिले, उसको वे अपने कल्याण का साधन बनावे। अर्जुन के लिए भी ये बात थी, सेटल कर देते, सेटल शब्द भी है, भगवान सेटल कर देते, पर दुष्टों का नाश कराना है, इससे युद्ध कराना उचित समझा। भगवान ने कितनी गहरी बात कही, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, तू नहीं निमित्त बनेगा तो भी ये तो मरेंगे ही, भीष्म द्रोण आदि सब मरने वाले हैं, विश्वास नहीं तो ले मेरे मुंह में देख, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतांस त्वयि मा जहिष्ठा। तू क्यों इसमें फालतू तकलीफ उठाता है, तो मरे में देख। उन्होंने दिखा दिया, इसलिए अपने प्यारे प्रेमी अर्जुन को भगवान ने संकट में डाला। आखिर फल कितना उत्तम हुआ, युद्ध रूप संकट में डाला, लेकिन फल कितना अच्छा हुआ। जो आगे अभी हमारे सामने दुख आने वाले नहीं है और वो आने के लिए तैयार हैं, उन दुखों के नाश के लिए अभी सजग हो जाओ। इससे अच्छा और कोई आपके जीवन में चतुराई नहीं है, अभी से ही सावधान हो जाओ। भजन करो, सत्संग करो, भजन करो, सत्संग करो। प्रारब्ध जो अभी आपके सामने आया है तो यूं ही नष्ट हो जाएगा। बचपन में आपने दुख पाया, नष्ट हो गया। जवानी में आपने दुख पाया होगा, नष्ट हो गया। दुख तो मिलता ही है, सुख भी मिलता है, नष्ट हो गया। ये तो यूं ही नष्ट, वो तो नष्ट होने के लिए आया है। पर जो अब आएंगे, संचित का जो भंडार भरे पड़े हैं, वो जब अपने सामने आएंगे तो क्या दशा होगी, उनसे भयभीत रहो। आजकल लोग प्रारब्ध का जो फल, प्रारब्ध से जो आते हैं उसमें भयभीत होते हैं। अरे इसमें भयभीत मत हो, इनको तो आप सेटल कर सकते हो, उनको उनका क्या करोगे। एक भाई के बेटा नहीं है, उसके प्रारब्ध में नहीं है, फिर वो पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो हो भी जाए और नहीं भी हो। प्रायश्चित करना तो भोगी है, भगवान की भक्ति करने से दुख है वो समूल नष्ट होता है, नहीं तो आर्त है वो भक्त कैसे होगा? ब्राह्मण श्रवण में उसे वाल्मीकि रामायण में श्रवण की बड़ी सुंदर कथा आती है, जो मनुष्य उसे पढ़ता है उसके अश्रुपात होने लगते हैं। आज भी कोई लड़का माता पिता की सेवा करता है तो उसे श्रवणी कहते हैं। अपने भी श्रवणी बने, परंतु आजकल तो लोग कंस बन रहे हैं। कंस ने अपने बाप को दुख दिया और जेल खाने में डाला। माता के साथ किस प्रकार व्यवहार करें, जिस प्रकार भगवान राम ने केकी के साथ किया है। ये जो बड़े बड़े अच्छे चरित्र हम सुनते हैं, वो क्यों सुनते हैं? केवल समय काटने के लिए थोड़े ही सुनते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए सुनना चाहिए। भगवान राम साक्षात परमेश्वर थे, उनकी सिखाई हुई बात तो हमको ग्रहण करनी ही चाहिए कि भाई देखो, मैं परमेश्वर हूं, मेरा कोई मां बाप नहीं है, परंतु जिसको मैंने मां बाप स्वीकार किया है उनके साथ मेरा कैसा बर्ताव है, ये बर्ताव आप भी करो। भगवान जो कुछ लीला करते हैं उसमें हमारा हित भरा रहता है, जिसमें जितना त्याग है वह उतना ही परमात्मा के नजदीक है। हम लोगों को त्याग अपनाना चाहिए। जरा ऊपर उठो, इस दलदल से ऊपर उठो। त्याग आपको बहुत बड़ी शक्ति देने वाला है। त्याग में आपको कोई पराधीन नहीं बनाता है, आप स्वतंत्र हैं। फल में आप परतंत्र हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में त्याग की प्रधानता है, उसमें अधिकार नहीं है। फल में अधिकार नहीं। प्रश्न, भगवान के साथ हमारा संबंध भी रहे और संसार का भी काम होता रहे, ए दोनों बातें हो सके के क्या किया जाए कि दोनों काम होता रहे, संसार का भी काम होता रहे और भगवान भी याद रहे। उत्तर, बात ठीक है, दोनों काम हो न सके छे, और होने से बड़ो लाभ छे। तुलसीदास जी कहते हैं, असंभव यदि होनी बात, ये बात असंभव होनी होती तो तुलसीदास जी आदि क्यों बोलते, ये बात हो सकती है। मैं बालक था तब देश में दो बार दो नर आए, बांस गाठे उस पर मोटा रस्सा बांधा। शेर जी कहते हैं, मैं बालक था तब हमारे देश में चूरू की तरफ दो नर आए, दो नट आए, दो नट आए, ठीक, दो नट आए। वो नर आए तो क्या, नर तो आदमी आए बोल देते, दो नट आए। बांस गाड़े, बांस पर मोटा रस बांधा, इधर नटनी ने सिर पर दो घड़ा रखा, सिर पर गले में ढोल बजा रही है, मुंह से गाना गाती है, पग में सींग बंधा हुआ है और रस्से पर चलती है, सींग को रस्से पर रखती है, सिर पर मटकी है, उसका प्रधान लक्ष्य चरणों की तरफ है। बात क्या है? अभ्यास, उसने अभ्यास किया है, पैर के नीचे सींग लगाए और रस्से पर वो सींग वाला पैर रख करके चले। सेठ जी ने कहा, महाराज जी ने भी कहा कि सत्संग होता हो ना, सत्संग सुने उस समय जप नहीं करना चाहिए, जप करने से न तो सत्संग सुनेगा न जप हो पाएगा। जप करने के लिए और समय बहुत है, और समय तो गप लगाएंगे, सत्संग में जप करेंगे तो वो जप काम का नहीं है। कि भाई इतना जप का ये समय, जप भी हो जाएगा और सत्संग भी हो जाएगा, दो नाव से कोई नहीं तरा। अब उसने क्या किया, अपने पैर के नीचे सींग है उसके, अब चले। तो प्रधान लक्ष्य क्या था, चरणों की तरफ था कि पैर मेरे कहीं रस्से से इधर उधर नहीं हो जाए। तो उसने अभ्यास किया, मेरे कहने पर आप ध्यान दो। वो अभ्यास काय के लिए किया, केवल पैसों के लिए, कि भाई ऐसा करने से लोग हमको पैसा खूब देंगे और हम अभ्यास की बात कहते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए अभ्यास करने में रुचि नहीं है। तत्परता से अभ्यास करें तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। उस नटनी की मुख्य वृत्ति चरणों में है, इसी प्रकार हमारी मुख्य वृत्ति भगवान के चरणों में रहनी चाहिए, भगवान में रखनी चाहिए, और ऊपर की वृत्ति संसार का काम करने में रखनी चाहिए। हृदय से भगवान से जुड़ो। हम अपने हृदय में ऐसा समझें कि भगवान गुप्त रूप से हमारे साथ हैं, हमको पता नहीं लेकिन हमारे साथ है। फिर मन से हम भगवान का स्वरूप देखते रहे कि भगवान तो अपने स्वरूप को छिपाते हैं, पर मैं तो छिपे हुए स्वरूप को देखूंगा ही। ऐसे भगवान की छवि को हृदय में बैठाओ और बुद्धि का निश्चय करो कि बस बस यही भगवान मेरे साथ है। मन से उनका मनन करे कि भगवान मेरे साथ है। भोजन करता हूं तो मैं अकेले थोड़े ही करता हूं, मेरे साथ बैठ के भगवान भी गुलाब जामुन खाते हैं, भोजन करते हैं, चलते हैं तो मैं अकेला थोड़ी चलता हूं, भगवान भी चलते हैं, सोते हैं तो अब भगवान सो रहे हैं। ये हमारा भाव दृढ़ हो जाए तो भगवान की स्मृति हर वक्त कायम रहेगी। काम करो, भगवान तो मेरे पास है। हमारा मन का स्वभाव है कुछ न कुछ चिंतन करने का। अब उसको एक जिम्मे दे दो कि भगवान का मनन करो, हम संसार का काम करते हैं तो हम भगवान का मनन करो। शरीर से एक क्रिया करो और मन से भगवान का चिंतन करो। शरीर को अलग लगाओ, मन को अलग लगाओ। और कोई आपको बाहर से कुछ परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काम करना है। मन से दूसरा मनन करते हो आप, कुछ न कुछ तो मनन करोगे ही, तो फिर भगवान का मनन करो। शरीर से क्रिया होती है तो होने दो, शरीर की क्रिया का कोई महत्व नहीं है, मन के मनन का महत्व है। तो शरीर तो संसार के लिए काम कर लो, संसार के काम में भूल हो जाए तो वो चलेगी, पर भगवान के यहां भूल नहीं चलती। जो भगवान की शरण में होता है भगवान उसे सब प्रकार से संभाले रहते हैं। इस प्रकार यदि संसार में भूल हो गई तो भगवान संभाल लेंगे। कई उदाहरण है, एक सिपाही था, खजाने पर पहरा देने वाला था। एक रोज बुखार आ गया, वो जा नहीं सका ड्यूटी पर, जा नहीं सका। विचार करता रहा कि क्या करूं, नौकरी मेरी खारिज हो जाएगी, लेकिन लाचार हूं क्या करूं। पीछे उसको पता चला कि उस भयंकर रात में ठंड में उसकी जगह भगवान ने जाकर पहरा दिया। इधर सिपाही को पता नहीं, सिपाही ने दरखास्त दी कि मेरे से कल भूल हो गई, मैं बहुत भयंकर बीमार था, मैं आ नहीं सका, मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा की जाए। हाकम ने वहां और लोगों को बुलाया और पूछा, क्यों भाई ये आदमी कल ड्यूटी पर था कि नहीं। सबने कहा साहब ये तो था, ये तो कल ड्यूटी में, हम भी ड्यूटी पर थे, हम हमारी ड्यूटी में, ये अपनी ड्यूटी में, हमारे से इनका मिलना भी हुआ था, कुशलक्षेम पूछी थी। ये तो कहते हैं कि मैं कल आया ही नहीं, मुझे भयंकर बुखार था। कि साहब हमने आपस में बात की है। हाकम ने कहा देखो भाई कल रात को तुम पैरे पर थे, तुम ड्यूटी पर थे। सिपाही ने कहा हजूर मैं नहीं था, कोई दूसरा आ गया होगा। नहीं, यहां कोई दूसरा नहीं आया है। क्या ये लोग आपको पहचानते नहीं है? सिपाहियों से पूछा, क्या नहीं साहब बिल्कुल पहचानते हैं, हम रात दिन साथ में रहते हैं, बिल्कुल ही आया था। सिपाही रोने लग गया, कहने लगा आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, रात को भगवान पहरा दे गए, आपने उनके दर्शन कर लिए, आप तो कृतार्थ हो गए, मैं तो अब इस्तीफा देता हूं, भगवान का भजन करूंगा। जो मेरे एक दिन की अनुपस्थिति पर पहरा दे सकता है वो मेरे आगे खर्चे की परवाह भी वही करेगा। छोड़ दी। और वही सिपाही अंत में जाकर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा हो गए, नाम नहीं दिया उन्होंने। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अपने भक्तों के लिए भगवान पशु के माफिक वजन ढोने के लिए तैयार है। अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना ये योग वहन है। लौकिक पारलौकिक सभी वही वहन करते हैं। भगवान के वचन मिथ्या थोड़े ही हैं। भगवान ही जब मिथ्या बोलेंगे तो फिर सत्य कह रहेगा क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा जो असत्य को जानते भी नहीं है, उनके वचनों पर भी विश्वास नहीं। यदि भगवान सच्चे हैं तो हमें चिंता किस बात की? इसलिए अभ्यास करो, दोनों काम होगा, शरीर को संसार में और मन को भगवान में। विश्वास रखो भगवान पर। आप विश्वासघात कर सकते हैं, भगवान कभी विश्वासघात नहीं करते। दूसरी बात और बताई जाती है, जो वस्तु हमारे सामने पड़े भी मैं भगवान का दर्शन करो, इसमें भगवान, उसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान, फिर आप व्यवहार करो तो चाहे जड़ हो चेतन हो सब में भगवान देखोगा तो आपको व्यवहार बहुत पवित्र होवेगो। भी व्यवहार में आपने भगवान की अनुभूति होवेगी। हमारा व्यवहार भी होवे और भगवान को भी माने। अब आप एक बात पूछ सको, हमारो लड़को है वो हमें प्रणाम करे तो भी मैं भगवान देखांगा तो मैं भी सु प्रणाम किस प्रकार करावांगा? कुत्ते में गधे में भगवान देखेगा तो फिर मैं कुत्ता ने गधा ने प्रणाम करांगा? यदि करांगा तो लोग जमा हो जावेगा और कहेगा कि वो पागल है पागल। के करा बात ठीक है, लोग पागल कहवे तो कहने दो। हमें तो दोनों बात रखनी है, व्यवहार भी करना है और भगवान से भी जुड़ना है। देखो इसके लिए नाटक का उदाहरण बहुत अच्छा है। नाटक में तो व्यवहार स्वांग के अनुसार करते हैं और भीतर में समझते हैं कि ये हमारा लड़का है और हमारा पिता है, मैं इसका पिता हूं। लड़का समझता है हमारा पिता है। इसी प्रकार बाहर को व्यवहार तो नाटक की ज्यों करो, लड़को प्रणाम करे तो ठीक है, अंदर जो सोचो कि भगवान है। नाटक ने मत बदलो, बदलने के लिए भाव रहो। कुत्ता गधा है बेन कुत्ता गधा है तो बेन यही है, पर बिरमाए न भगवान है। कुत्ते गधे के प्रति ऐसो बर्ताव मत करो कि बिरो अहित हो तो वह साक्षात शरीर सु प्रणाम करे। ई बात में लज्जा आवे, परंतु भाव में कोई लज्जा की बात नहीं। भाव कोई न मालूम देवे नहीं, कुत्तो है तो कुत्तो है, अंदर से भाव से प्रणाम करो इसमें भगवान है। आदमी के साथ आदमी को बर्ताव करो, अंदर से भगवान समझो। भगवान ने साफ कह दिया, वासुदेव सर्व, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। एक भगवान का भक्त था, रोज भगवान की पूजा किया करता था, बगीचे से पुष्प लाता, बड़े प्रेम से पूजा करता। एक दिन भगवान की पूर्ण दया हो गई, उसे सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। प्रातःकाल उठा तो पूजा के लिए पुष्प लाने गया, तुलसी का पत्ता तोड़ने लगा तो उसे भगवान दिखे, पत्ते पत्ते में भगवान दिखे, वृक्ष भी भगवान, तुलसी दल भी भगवान। अरे भगवान को कैसे तोड़े? अरे ना ना ना। फिर पुष्प तोड़ने गया तो गुलाब के वृक्ष में भगवान, पुष्प में भगवान, तो वो घबरा गया, अरे भगवान है इनको नहीं तोड़ना। फिर एक लता के पास गया, लता के पास पुष्प, लता में पुष्प थे, बड़ी सुगंध आ रही थी, वो उसको जो ही हाथ लगाया भगवान दिखे। फिर एक वृक्ष पर चढ़ा, वो जो ही वृक्ष पर चढ़ा तो उसको यूं नीचे जमीन पर देखा तो अरे मैं तो भगवान पर चढ़ गया, बहुत जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं इसको यहां से तोड़ करके भगवान पर चढ़ाऊं और इस चढ़ाई हुई सामग्री से भगवान की पूजा करूं तो भगवान को ही तोड़ना और भगवान को चढ़ाना, ये तो नहीं होगा। फिर वो जल लेने गया, बड़ा अच्छा तालाब में जल, वो जल लेने गया तो जल में भगवान। आखिरकार वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा क्या करूं, मेरी तो पूजा ही बंद हो गई, न तो मैं जल से भगवान को स्नान करा सकता हूं, न मैं तुलसी दल अर्पित कर सकता हूं, न मैं उनको फूल चढ़ा सकता हूं। गुरुदेव मेरे बड़ी मुश्किल हो गई, मैं क्या करूं। खूब रोया। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी इतने दिन तक जो पूजा थी वो सफल हो गई, पूजा का जो फल है वो तुझे मिल गया, अब तो सब जगह भगवान को देख। जिस प्रकार गोपियां सर्वत्र भगवान को देखती थी, इसी प्रकार हमें सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। गोपियों के लिए तो सारा दृश्य आयना था, आयना माने कांच। आयने में जैसे हमें हमारा मुख दिखता है, बस गोपियों को इस संसार रूपी आयने में सर्वत्र भगवान का मुख दिखता था। कोई कांच का महल हो और उसमें हम चले जाए तो जिधर देखे हमारा ही हमारा मुख दिखेगा। इसी प्रकार अपने रूप के स्थान में भगवान का रूप देखना चाहिए। गोपियां इसी तरह सब में भगवान ने देखती है। यह भेद उपासना की बात कही है। अभेद उपासना वाले महात्मा सर्वत्र आकाश की ज्यों भगवान को देखते हैं, वास्तव में एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। बुद्धि से विश्वास रखो, केवल एक परमात्मा ही है, वो ही विराजमान है। दिखने वाले पदार्थ मृग तृष्णा के माफिक है। सब भक्ति के मार्ग के अधिकारी होते हैं। जो पुरुष अपने शरीर को पूजाता है या मरने के बाद अपने फोटो आदि को पूजवाने के लिए कहता है, वह तो महामूर्ख है, बड़े भारी अंधकार में है। मेरी यहां फोटो रखना, मेरी ऐसी पूजा करना, अभी भी मेरी पूजा करो, बड़े अंधकार में। भगवान की स्मृति बराबर कैसी रहे, ये बात चल रही थी। पुजारी है, मंदिर में भगवान की पूजा करता है, एक हाथ से आरती करता है, एक हाथ से ताली बजाता है। क्या उदाहरण है, ये दोनों काम करता है ना, आप देखते हो ना। अपने को यदि दोनों काम दे देवे तो अपने अभ्यास के बिना दोनों काम होने में कठिनाई है, पर कई दिनों का अभ्यास करे तो अपने भी हो सकता है। इसी प्रकार ताली बजाना तो संसार का काम, आरती करना ही भगवान का काम। हम आप लोगों को व्याख्यान देते हैं, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसकी तरफ भी लक्ष्य करने की कोशिश करते हैं। हमारे व्याख्यान में कोई रुकावट नहीं आती। हम ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे निरंतर भगवान की स्मृति रहती है, ये तो हम नहीं कहते हैं। ये नहीं कहा है कि और बातों का स्मरण होता, ये नहीं कहा। इतना ही कहते, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे निरंतर भगवान की स्मृति रहती है, पर हो तो सकती है। आप कहें हमारे क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यही दिया जाएगा कि आप कोशिश नहीं करते। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। नारायण नारायण नारायण।